खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज का दिन हम सबको बख्श दिया और उसके पीछे एक मकसद है और वो सबसे बड़ा मकसद इस जमीन पर हमारी सांसों का लेने का ये है कि उसके कलाम को सीखें, क्योंकि जिंदगी की हर नाअमीदी में, जिंदगी के हर तरह के हादसों में, जिंदगी की हर तरह की खुशियों में और जिंदगी के तमाम हालातों में उसका कलाम हमारे लिए बरकत का बायस, फलदार, फायदे का बायस ठहरता है। क्योंकि अगर हम बहनों की जिंदगी को देखें जो कलाम मुकद्दस में हमारे लिए दर्ज की गई ईमानदार औरतें, तो उनकी जिंदगी से जब देखते हैं हन्ना की जिंदगी को, अलिशबा की जिंदगी को और सायरा की जिंदगी को, बाप इब्राहिम की बीवी को, तो उनकी जिंदगी में खुदा ने ऐसा अजीब काम किया कि उनको उनकी नाअमीदी में अल्लाह जैसी नेमत से नवाजा। सो इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि खुदा अगर उनको देख सकता है, दे सकता है, तो हमको भी दे सकता है। जिंदगी में देखते हैं कि दानियल, उसके दोस्त दाऊद, मूसा और फिर बनी इसराइल कौम के वो तमाम रहने वाले मुश्किल में हैं, मुसीबतों में हैं, दुखों की आग का सामना है, लेकिन खुदा उनके साथ था, उनको रहाई दी, उनको छुटकारा दिया, उनकी हिफाजत की। तो ये हमारी जिंदगी में भी हौसला अफजाई की बात बनती है कि वो हमें भी छुटकारा दे सकता है। सो आए चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुकें, अपने दिल, अपनी जान, अपनी सोच, अपनी अकल को, अपनी तवज्जो को, छोटे बड़े खासकर बच्चे खुदावन की तरफ तवज्जो को लगाएंगे। हालेलुया। और कोई भी बात, परेशानी, गुनाह, गलती, कमी कमजोरी बहका रही है परेशानी या आपकी तवज्जो को दूसरी तरफ लेके जा रही है, तो यीशु मसीह से हिकमत और दनाई मांगे ताकि जो कुछ आज हम सीखें, हम सब के ईमान की बढ़ोती, मजबूती और तरबियत, और इस दुनिया में जैसे बहन ने दुआ की कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी कलीसिया में, हमारी कलोनी में बेदारी आए। सो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि जो कुछ पढूं, जो कुछ कहूं, इनकी रूहानी तरक्की के लिए हो, मेरी रूहानी तरक्की के लिए हो, और खुदावंद इस मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद तेरा वजूद, तेरी कलीसिया, तेरा बदन, तेरे लोग तरक्की पाते जाएं और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले, और उसी के मुकद्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। रसूलों के इमाल उसका पहला बाप, उसकी पहली आयत, यहां पर खुदावंद का बंदा लिखने वाला सुनने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए तरबियत और हकीकत की बातें लिखता है जो वाकया में हुई, और कहता है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु मसीह शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। इससे पहले के आगे पढ़े, यहां पर ए थियोफिलस, ये उस वक्त का एक बादशाह था और लिखने वाला, किसी को पता ये कौन था? इमाल की किताब का लिखने वाला किसी को पता है कौन था? लूका तबीब। कौन था? क्योंकि यहां पर वो कहता है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन बातों के बयान में तसनीफ किया। तसनीफ का मतलब लिखा, तहरीर किया, उसे कलम बंद किया। और ये पहला रसाला कौन सा है? लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील। और कहता है कि उन तमाम बातों को जो यीशु शुरू में करता था, वो तमाम मोजजात, زکئی کا بیماروں کا 12 برس سے بیمار عورت کو شفا دینا اور اس میں علیشبا اور زکریا کا ذکر اور وہ تمام کام جو یسوع مسیح نے کیے، کہتا ہے کہ وہ پہلا رسالہ میں نے لکھا اور ان کے بارے میں بھی لکھا جن کو یسوع مسیح نے چنا، یعنی کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا کہ اس کے نام کی گواہی دیں. اور پھر تیسری آیت میں اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے لوگوں پر 17 دفعہ ظاہر ہوا. کتنی دفعہ؟ 17. کتنی دفعہ؟ 17. 17 دفعہ بائبل مقدس ہمیں حوالہ جات کے ساتھ، جیسے یہاں پر لوکا طبیب کہتا ہے، ثبوتوں کے ساتھ یسوع مسیح نے ان کو کیا کیا، اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا. کتنے واقعات تھے؟ 17 واقعات. اور آج جو واقعہ ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ وہ 11 واقعہ ہے. کتنا؟ 11. یہ 11 دفعہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور اس واقعہ میں ہم پڑھیں گے کہ یسوع مسیح ان سے جدا ہوگا، آسمان پر اٹھایا جائے گا. سو چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح 40 دن تک ان پر ظاہر ہوتا رہا، ان کو تعلیم کی باتیں سکھاتا رہا، اور ان 40 دنوں کے دوران یسوع مسیح نے کیا کیا؟ شاگردوں کے دماغوں کو کھولا، ان کی بند عقلوں کو کھولا تاکہ وہ کلام خدا کے الہی بھیتوں سے واقف ہوں. اس لیے ہمیں بھی جب بھی خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے پالوس رسول دعا کرتا ہے کلیسیا کے لیے کہ خدا باپ ان کے دلوں کی آنکھوں کو، ان کی سمجھ کی آنکھوں کو روشن کر دے، کھول دے، تاکہ وہ بھیت، وہ سچائیاں جان سکیں. سو یسوع مسیح 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا. اس کا اگر ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا نے، جب لوکا کی انجیل کو ختم کرتے ہوئے یہ باتیں لکھی ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 45 آیت میں، یہاں پر یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوا ہے اور یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا. اور 45 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے اس کا لفظ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں پھر یسوع نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، یعنی کہ پرانے عہد نامے کی وہ ان تمام گہری باتوں کو جانیں، سمجھیں، ان کا علم رکھیں. اور یسوع مسیح نے ایسا کیا. اور چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا، ایمال اس کا 1 باب اس کی 4 آیت، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ ٹھہرے رہو، ابھی نہیں جانا، ایک قوت، ایک طاقت ملنے والی ہے، قوت کا لباس ملنے والا ہے جو تمہیں ابلیس پر، جو ابلیس کے جھوٹوں پر، جو شیطانی قوتوں پر، جو بیماریوں پر، جو دنیا کے تمام حالاتوں پر، جو تمہاری ان تمام امتحانوں میں کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. جب تم ستائے جاؤ گے تو تمہارا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا، جب تم بہک جاؤ گے تو وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، جب تم پریشان ہوگے تو وہ تمہیں اطمینان دے گا. اور وہ کیا ہے؟ خدا کا پاکرو. وہ کیا ہے؟ خدا کا پاکرو. ہم اسی کو آگے چل کر دیکھیں گے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس وعدے کے منتظر رہو. اور 5 آیت میں، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسما دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسما پاؤ گے. سادہ سی بات، یسوع مسیح نے کہا کہ وہ قوت، وہ طاقت تمہیں ملنے والی ہے. اور پھر 6 آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ शिगिर्दों की, उस वक्त के लोगों की ये उम्मीद थी कि जितनी जल्दी हो सके हम रूमी हुकूमत के गुलामी से, उनके इख्तियार से छूट जाएं, ताकि मसीह माउद दाऊद की नस्ल से आने वाली वो कॉम्पल, जिसे कहा गया है कि वो ऐसी शाख बराबर होगा, ऐसी शाख होगा, ऐसी कॉम्पल होगा, ऐसा बादशाह होगा जो इख्तियार के साथ, इंसाफ के साथ अपने लोगों पर क्या करेगा, हुक्मरानी करेगा। सो लोग यीशु मसीह के शिगिर्द यहां पर सोच रहे हैं कि यीशु मसीह हम पर जाहिर हुआ है, वो जल्द ही बादशाही कायम करेगा और फिर हुमी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जैसे आज के दौर में बहुत से ईमानदार इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द यीशु मसीह आए, ताकि हम इस दुनिया के दुखों, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों से और गुनाहों से और मौत से और फसाद से और भूख से और नंगेपन से और हर तरह के कराहने से, रोने से छूट जाएं। यहां तक सारी मखलूक, इस जमीन की तमाम मखलूक दुख में कराती है कि कब खुदा का बेटा जाहिर हो, ताकि उनको सुकून की चैन मिले, सुकून मिले, चैन मिले, इत्मीनान मिले। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, सातवीं आयत में उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। सादा सी बात, यीशु मसीह कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा, जब मैं बादशाही कायम करूंगा, इसके बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मेरा बाप जानता है कि क्या वक्त है, क्या महीना है, क्या साल है, क्या दिन है। और यीशु मसीह ने उनको कहा आठवीं आयत में, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजल होगा, और तुम पर नाजल होगा तो तुम कुवत पाओगे, तुम कुवत पाओगे, और यरूशलम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये वो कुवत है जो आज आपके लिए दस्तियाब है, आपके लिए मौजूद है। कितने यहां पर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर? इसका मतलब है कि खुदा का पाक रूह आपको हासिल है, खुदा का पाक रूह आपके लिए कुवत के तौर पर मौजूद है, अबलीस से बचाने के लिए, झूठों से बचाने के लिए, हर तरह के बुद्रूहों के इख्तियार से बचाने के लिए। बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो खुदा के रहने की जगह बन जाता है, उसमें बदरू घुस नहीं सकती, उस पर बदरू का कोई इख्तियार नहीं हो सकता, वो यीशु मसीह की सुकूनत गाह है, वो शैतान की सुकूनत गाह नहीं बन सकता। इसलिए यह कुवत यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मिलेगी, फिर तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और नवीं आयत में क्या लिखा है, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और यीशु मसीह, ये वो सीन है फिल्म का जिसे हम देखते हैं यीशु मसीह की फिल्म में, कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जाकर सब कौमों में मनादी करो, तो यीशु मसीह को दिखाया गया है कि वो आसमान पर उठाया गया और शिगिर्द नीचे खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। और यहां पर लूका तबीब उसी वाक्य को लिखते हुए कहता है दसवीं आयत में, उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। फरिश्तों ने आकर उनको बताया, आ खड़े हुए, उनको बताएंगे कि तुम, उनसे सवाल पूछेंगे कि तुम क्यों खड़े हो, और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास है आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुम ने उसे आसमान पर जाते देखा है। किस किस का ईमान है कि यीशु मसीह वापस आएगा? इसीलिए हम गीत गाते हैं, हवा ची उठे जाना है, यीशु ने जद आना है, पीछे ना रह जावी तू चलिया, रूदाए फरमाना है, हवा ची उठे जाना है। तो ये वो वाकया है जब यीशु मसीह आएगा। क्या फरिश्तों ने कहा कि जैसे तुमने यीशु मसीह को जाते देखा वैसे ही उसे फिर वापस आता देखोगे, फिर वो वापस आएगा। आज इस दुनिया में दुख, बयान से बाहर है, मुसीबतें बयान से बाहर हैं। पिछले दिनों में मैंने कलीसिया में सुबह की इबादत में नौजवान जो शाम को बाइबल पढ़ते हैं उनको मूवी दिखाई कि यीशु मसीह का जो इकरार करता है उसका हाल क्या होता है, और मैंने इनको दिखाई वो मूवी, उसमें किस तरह यीशु मसीह के लोगों को मारा जाता है, किस तरह पीटा जाता है, किस तरह उनको बेइज्जत नंगा गलियों में घसीटा जाता है। और उनका जुर्म चोरी की नहीं, झूठ बोला नहीं, किसी की घर में कोई डकैती की नहीं, किसी की मां बहन को कोई बुरी बात कही नहीं, सिर्फ ये इकरार किया कि यीशु मसीह जिंदा है और वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। इस बायस लोग डंडों के साथ, पत्थरों के साथ, पांव के साथ, हाथ के साथ उनको लहूलुहान करते हुए घसीट रहे हैं बाजारों में। किस लिए? यीशु मसीह पर ईमान। और गवाह का मतलब है गवाही देने वाला। आप में से कितने यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते हैं? फिर उसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह वाहद खुदा है। उसका इनकार कैसे भी हालात हो, इनकार नहीं बल्कि इकरार करने की जरूरत है। और ये किस तरह होगा? रूहुल कुद्दस की कुदरत से। किस तरह होगा? किस तरह होगा? आप में से किस किस को रूहुल कुद्दस हासिल है? शर्मा क्यों रहे हैं? यीशु मसीह पर पहले बताएं ईमान कौन कौन रखता है? सब रखते हैं। तो फिर जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसके लिए रूहुल कुद्दस मौजूद है। नहीं यकीन? निकाले हवाला। इफिसियों पहला बाप, इफिसियों पहला बाप, यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल जब वो जेल में है गवाही देने के बायस, जब उसे हाथ खड़ियां लगी हुई हैं, जब उसका बदन बैंतों से मार मार कर निशानों से भरा हुआ है, जब वो सताया जा रहा है, तो वो ये खत लिखता है और ये बात लिखता है कि उन सब के लिए खुदा का पाक रूह मोहर के तौर पर उनकी जिंदगियों पर लग गया है। इफिसियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत, इफिसियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत, और यहां पर खुदा का बंदा पालूस कहता है, और उसी में तुम पर भी, और उसी में, ये उसी का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ? यीशु मसीह में। इसे हम कह सकते हैं और यीशु मसीह में, जिसका लिए लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने यानी कि जब इसने, जब उसने, तो एक के लिए इस्तेमाल हुआ, जब तुमने यानी कि तमाम ने, जब तुमने कलामे हक को सुना यानी कि यीशु मसीह के कलाम को सुना, यीशु मसीह की बशारत को सुना, यीशु मसीह के पैगाम को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। तुम्हारी निजात की यीशु मसीह की खुशखबरी हमें क्या देती है? निजात। क्या देती है? निजात यानी कि हमेशा की आग से बचाती है, अबलीस के फर्जंदों से हमें खुदा के फर्जंद बनाती है, दोजक से निकालकर हमें फरदोस में ले जाती है, और यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी बख्शती है। किस किस ने यीशु मसीह की खुशखबरी को कबूल किया है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो खुदावंद है? सब ने। तो आप सब मसीही हैं। तो क्या लिखा है? कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, और उस पर ईमान लाए यानी कि यीशु मसीह का यकीन किया। और क्या लिखा है? पाक महोदय यानी कि रूहुल कुद्दस की, पाक महोदय रूह की मोहर लगी। क्या लगी? रूहुल कुद्दस की मोहर लगी, मोहर लगी। गवर्नमेंट की किताबों पर किसकी मोहर लगी होती है? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पंजाब, तो वो किसके मुतैद हुई कि ये गवर्नमेंट ने छापी हैं? इसी तरह आप पर रूहुल कुद्दस की मोहर लगी है, तो आप किसके लोग हुए? खुदा के, यीशु मसीह के। तो आपको ना तो कोई हला सकता है, ना कोई बर्बाद कर सकता है, ना तबाह कर सकता है। और हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह 11वीं दफा अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुआ, हुक्म दिया कि जाकर मनादी करो। हम में से कितने जाएंगे? हम में से कितने मनादी के लिए जाएंगे? मनादी का काम बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक खानदान था और वो जंगल में गया। उसके पहले अब्बू गए, उसे मार दिया गया। उसका भाई गया, उसे मार दिया गया। फिर उसका एक और भाई गया, उसे मार दिया गया। उसी खानदान में से एक लड़की, उसने कहा कि मैं उसी जगह पर जाऊंगी जिस जगह पर मेरे बाप को, मेरे दोनों भाइयों को यीशु मसीह की गवाही के लिए कत्ल किया गया, मारा गया। तो सबने कहा कि वो किसी को कबूल नहीं करते। जो वहां पर जाता है, जब जहाज वहां पर जाकर खड़ा होता है तो बंदे को उतारते हैं उस कबीले में, तो उसे खा जाते हैं, उसे काट देते हैं, उसे जला देते हैं, उससे बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो तू ना जा। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी, मैं यीशु मसीह की गवाही दूंगी, मैं जाऊंगी और मैं जाकर यीशु मसीह के बारे में उनको बताऊंगी। आप एक हफ्ते 30 दिन बाद फिर दोबारा इसी जगह पर हेलीकॉप्टर लेकर आना। अगर मैं यहां पर मौजूद हुई तो मुझे साथ ले जाना, अगर ना हुई तो समझ लेना कि मैं भी मर गई। तो क्या हुआ? उस लड़की के घर वालों ने, सारे कलीसिया ने उसे कहा कि तू जा, और उन्होंने जहाज पर उसे उस कबीले के ऊपर उतारा और वो उतरी। और 30 दिन बाद क्या हुआ? वही लड़की और वो तमाम कबीला, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और निजात पाई, क्योंकि उन्होंने अपने उस जादूगर बाबे के वसीला से, जो वहां पर उनकी रहनुमाई करता था, एक नबुवत थी उनकी, एक नबुवत थी उनके कबीले की कि एक औरत आसमान से उतरेगी और वो तुमको निजात दहिंदा के बारे में खबर देगी। इसलिए जब कोई आदमी जाता था तो उसे वो मार देते थे, जब कोई आदमी जाता था उसे मार देते थे, क्योंकि वो कहते थे नबुवत तो वही है कि आसमान से एक बंदा उतरता है, आसमान से उतरते हैं, लेकिन औरत नहीं है, इसलिए वो मार देते थे। तो उस लड़की ने फैसला किया, वो गई। तो तमाम कबीला जब वो वापस आए तो उसके साथ खड़ा नारे मार रहा है कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह ही वाहद है जिसकी कब्र खाली है, और यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है। ऐसा आज भी हो सकता है, हमें अपने घरों में अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में तालीम देने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, उनके ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। और यही हमारा इस जमीन पर मकसद है। कितने अपने घर में, खासकर बहनें, जब रोटी पकाती हैं तो शुक्रगुजारी करके खुदा के हजूर अपने खानदानों को देती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो नहीं, बराए मेहरबानी शुक्रगुजारी करके, खुदा बाप तेरा शुक्र हो इस मन के लिए, तो फिर देखे बरकत कितनी पड़ेगी। कितने भाई रोटी खाते वक्त और खाने से पहले खुदा के हजूर झुकते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। जो नहीं करते उनको करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की गवाही देने की जरूरत है। सुबह को इबादत होती है, अगर शाम को नहीं आ सकते सुबह को इबादत होती है, यहां पर बाइबल पढ़ाई जाती है। शाम को नहीं आ सकते सुबह को आ सकते हैं, एतवार को आए। मैं चाहता हूं कि मेरे जहन में एक बात चल रही है कि बहनों में से या भाइयों में से, मैं चाहता हूं कि हर एतवार के लिए कोई ना कोई तलावत करने के लिए अपना अपना नाम दिया करे कि जी ऐस एतवार की पादरी साहब मैं तलावत करना चाहता हूं, तलावत करनी चाहती हूं। अपना नाम लिखवा सकते हैं ताकि आपको मौका दिया जाए। लड़कियां रफाकत बनाएं दुआ की, ताकि आपके बहन भाई मां बाप देखकर यीशु मसीह से बरकत पाएं, क्योंकि कोई भी मसीही पैदा नहीं होता, मसीही बनने के लिए यीशु मसीह को कबूल करना पड़ता है, यीशु मसीह को कबूल करना पड़ता है। جیسے ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تو اس کی مخصوصیت کے لیے پادری صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مخصوص کیجئے. اس لیے اس زمین پر ہمارے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ یسوع مسیح کی گواہی دینا. اور ہر طرح کے دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں سے گزرنے کی قوت کون دے گا؟ خدا کا پاک روح. ہاللویا ہاللویا. اب کون کون کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس خدا کا پاک روح ہے؟ کیونکہ اس کے پاک روح کی مہر آپ پر لگی ہے. اب کوئی بیماری یا پریشانی آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ جی مجھ میں بدرو بڑھ گئی ہے. نہیں, بدرو ایمانداروں میں نہیں بڑھ گھس سکتی, نہیں اس میں گھس سکتی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کیونکہ خدا کے پاک روح کی مہر, خدا کی مہر آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے اور یہ خدا کا حکم ہے. سو آئیں ہم سب خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں. خدا باپ تیرا شکر خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے پیغام کے لیے. آج جو بیج ہماری زندگیوں میں بویا گیا کہ یسوع مسیح ثبوتوں کے ساتھ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا, اور جو قدرت خداون تو نے ان کے لیے نازل کی وہ قدرت آج اس زمین پر موجود ہے. اور تو نے ہم سب کو اسی لیے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم میرا مقدس ہو, میرے رہنے کی جگہ ہو. خدا باپ ہم سب کو بڑی برکت دے اور تیرا بیٹا خداوند یسوع مسیح نام عزت اور جلال پائے. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین.